ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पात्र रविवार 31 मार्च 2019 के लिए है। विषय वास्तविकता। स्वर्णपथ सब उपदेशिक। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। उत्तरदायी अध्ययन भजन संहिता। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्ताकला को परागत कर रहा है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो परान को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वासिया युग हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिधर हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मे हैं। वो तो सोने से और भावतिक कुंदन से बढ़कर मनोहर हैं, वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सामुख ग्रहण युगे हैं। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरण आगत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरी बात को तू स्थिर रखता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सामुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वधा बना रहता है। यशाया। हे इसराइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छड़ौती में मैं मिस्र को और तेरी सनति कूश को और सबा को देता हूँ। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी सनति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सर्जा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। दानियल। नबूकदनज़र राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने इसे बाबल के प्रांत दोरा नाम मैदान में खड़ा कराया। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। वो नबूकदनज़र राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीव रहे। देख, शद्रक, मैशक और अबनगु नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्हें तूने बाबल के प्रांत के कार्य के ऊपर नकट किया है। उन्होंने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वो तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूरत तूने खड़ी कराई है, उसको धनवत नहीं करते। नबूकद नजर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मैशक और अबनगू, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को धनवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? और यदि तुम धनवत ना करो तो उसी घड़ी भड़कती हुई भट्टी के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबनगू ने राजा से कहा, हे नबूकद नजर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रायोजना नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस भड़कती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरुण, हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो तुझे ये मालूम हो कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को धनवत करेंगे। तब वो पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों साथ बंधकर उस भड़कती हुई भट्टी में डाल दिए गए। तब नबूकद नजर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का सवार रूप ईश्वर के पुत्र के सिद्धर्ष है। जब अधिपति, हाकम और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तो उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें कुछ जलने की गंध पाई गई। लूका। और ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले, और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने तई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। करंथियों। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब स्वर सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। युहन्ना। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समारण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाविता हुआ बलिदान करके छुड़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सिद्धर्ष न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भाली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मत्ती। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। वास्तविकता, आध्यात्मिक, समान जैसा पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। मनुष्य आध्यात्मिक और परिपूर्ण है, और क्योंकि वो आध्यात्मिक और परिपूर्ण है इसलिए उसे क्रिश्चियन साइंस में उसी तरह समझा जाना चाहिए। दिव्य विज्ञान में मनुष्य भगवान की सच्ची छवि है। मसीह यीशु में ईश्वरायक प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त किया गया है, जिसने ईश्वर के दुख हद प्रतिबिंब को नश्वर पर फेंक दिया और उनके जीवन को उनके कमजोर विचारों से ऊंचा उड़ा दिया। वो अनुमति देंगे विचार जो मनुष्य को प्रतीत बीमार पापी और मरने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वैज्ञानिक होने और दिव्य उपचार की मसीह की समझ में एक आदर्श सिद्धांत और विचार शामिल हैं। पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य विचार और प्रदर्शन के आधार के रूप में। यदि मनुष्य एक बार परिपूर्ण था लेकिन अब अपनी पूर्णता खो चुका है तो मनुष्यों ने ईश्वर की परिवर्तित छवि को कभी नहीं माना। खोई हुई छवि कोई छवि नहीं है। सच्ची समानता दिव्य प्रतिबिंब में खो नहीं सकती। इसे समझते हुए यीशु ने कहा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये दिव्य मांग इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो वैज्ञानिक है और पूर्णता की ओर ले जाने वाले मानव पदचिन अपरिहार्य हैं। व्यक्ति सुसंगत हैं जो देख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो तेजी से अच्छाई हासिल करते हैं और अपना स्थान प्राप्त करते हैं या धीरे धीरे प्राप्त करते हैं और निराश नहीं होते। भगवान को पूर्णता की आवश्यकता है, लेकिन तब तक नहीं जब तक आत्मा और मांस के बीच लड़ाई नहीं होती और जीत हासिल नहीं होती। होने की सत्यता का ध्यान रखें कि आदमी भगवान की छवि और समानता है, जिसमें सभी दर्द राहत और स्थाई हैं। याद रखें कि मनुष्य की पूर्णता वास्तविक और निर्बाध है, जबकि अपूर्णता दोषापूर्ण असत्य है और दिव्य प्रेम के बारे में नहीं है। दिव्य तत्वा में मानसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है और वो मन ईश्वर है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय अर्थात सभी शक्ति, सभी उपास्थिति, सभी विज्ञान, इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। ईश्वराय विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक प्रकार से पूरे रूप में मन के रूप में है जो उसे बनाता है। समय अभी तक अनंतता, अमरता और पूर्ण वास्तविकता तक नहीं पहुंचा है। सभी वास्तविक शाश्वत हैं। पूर्णता वास्तविकता को रेखानंद कराती है। पूर्णता के बिना कुछ भी पूर्ण वास्तविक नहीं है। सभी चीज़ें गायब होती रहेंगी जब तक पूर्णता प्राकृत ना हो जाए, वास्तविकता सामने ना आ जाए। शुरू से अनंत तक जो भी नश्वर है वो भावतिक मानव विश्वासों से बना है और कुछ और नहीं। केवल वही वास्तविक है जो ईश्वर को दर्शाता है। सत्य को तुरती के रूप में इतना आश्चर्यजनक और अपारिकृतिक नहीं होना चाहिए और तुरती को सत्य के रूप में वास्तविक नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य के रूप में बीमारी इतनी वास्तविक नहीं लगनी चाहिए। विज्ञान में कोई तुरती नहीं है और हमारे जीवन को सभी के सिद्धांत भगवान के साथ समान जैसे शापित करने के लिए वास्तविकता से शासित होना चाहिए। मनुष्य पाप, बीमारी और मृत्यु के लिए अक्षम है। वास्तविक मनुष्य पवित्रता से विदा नहीं कर सकता, ना ही परमेश्वर जिसके द्वारा मनुष्य का विकास किया गया है पाप करने की क्षमता या स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक नश्वर पापी भगवान का आदमी नहीं है। नश्वर अमर की नकल हैं। वो दुष्ट के या एक बुराई के बच्चे हैं जो घोषणा करते हैं कि आदमी धूल में या एक भावतिक भ्रूण के रूप में शुरू होता है। दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में अविभाज्य हैं। मनुष्यों में आध्यात्मिक व्यक्ति और उसके विचार की अनंत सीमा का बहुत ही अपूर्ण अर्थ है। अनंत जीवन उसी का है। अनंत काल तक ईश्वर की सरकार के तहत मनुष्य के लिए कभी पैदा ना होने और ना कभी मरने से उसकी उच्च संपत्ति से गिरना असंभव था। बीमारी, पाप और मृत्यु मानवीय निष्कर्षों की अस्पष्ट वास्तविकता हैं। जीवन, सत्य और प्रेम ईश्वराय विज्ञान की वास्तविकता हैं। वो विश्वास में डूब जाते हैं और आध्यात्मिक समझ में पूर्ण चमक प्राप्त करते हैं। मनुष्य कभी बीमार नहीं होता क्योंकि मन बीमार नहीं होता और ना ही पदार्थ हो सकता है। एक गलत धारणा दोनों बहकाने वाला और प्रलोभन, पाप और पापी, बीमारी और उसके कारण है। बीमारी में शांत होना अच्छा है, आशावादी होना भी बेहतर है, लेकिन ये समझना कि बीमारी वास्तविक नहीं है और ये सत्य इसकी वास्तविक वास्तविकता को नष्ट कर सकता है, सबसे अच्छा है। इस समझ के लिए सार्वभौमिक और सभी उपाय हैं। आप कहते हैं मैंने अपनी उंगली जला दी है। ये एक सटीक कठान है जो आपके अनुमान से भी अधिक सटीक है, क्योंकि नश्वर मन इसे जलाता है, ना कि कोई पदार्थ। पवित्र प्रेरणा ने मन की अव्यवस्थाएं पैदा की हैं जो आग की लपटों को कम करने में सक्षम है। जैसे कि बाइबल में तीन युवा अबरानी बंदियों को बाबलियों की भट्टी में डाला गया था, जब एक विपरीत मानसिक स्थिति सहज दहन उत्पन्न कर सकती है। नश्वर गलत विचारों की धारणाओं को आदर्श होना चाहिए जो आदर्श और शाश्वत हो। कई पीढ़ियों के माध्यम से मानव मान्यताओं को दिव्या अवधारणाएं प्राप्त होंगी और भगवान की रचना का अमर और आदर्श मॉडल आखिरकार होने की एकमात्र सच्चाई गर्भाधान के रूप में देखी जाएगी। ईश्वरीय विज्ञान अमूर्त कठान की व्याख्या करता है कि निम्नलिखित स्पष्ट प्रस्ताव द्वारा एक मन है। यदि ईश्वर या अच्छा वास्तविक है तो बुराई ईश्वर की अवनशीतता असत्य है, और बुराई केवल असत्य को वास्तविकता देकर वास्तविक प्रेरित हो सकती है। ईश्वर और मनुष्य के संबंध ईश्वरीय सिद्धांत और विचार विज्ञान में अविनाशी हैं, और विज्ञान ना तो कोई चूक जानता है और ना ही सद्भाव में लौटता है, लेकिन ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और जो कुछ वो बनाता है वो परिपूर्ण और शाश्वत है, जो उसके शाश्वत इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए तीन दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए। ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। उद्देश्यों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के उद्देश्यों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, प्रमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।